वचन। नमस्कार प्रिय श्रोताओ, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से पहला इतिहास नामक पुस्तक का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। इस पुस्तक में राजा दाऊद की वंशावली, उसका शासनकाल तथा उसके प्रशासन संबंधी कार्य का वर्णन मिलता है और मुख्य रूप से यरूशलेम नगर में खंडरों का पुनर्निर्माण और भवनों तथा मंदिरों के निर्माण के विषय में भी बताया गया है। तो आइए श्रोताओ, इससे पहले कि आज का ये बाइबल अध्ययन हम आरंभ करें, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
जय मृत्युंजय जयकार, सृजनहार, पालनहार, तारणहार।
जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु।
दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला,
दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला।
जय जन रंजन जय दुख भंजन,
जय जन रंजन जय दुख भंजन,
जय जयकार सिर जन नर्तन धार लियो अवतारा, दैनिज प्राण कियो छुटकारा,
नर्तन धार लियो अवतारा, दैनिज प्राण कियो छुटकारा।
जय जगत्राता जय सुखदाता,
जय जगत्राता जय सुखदाता,
जय जयकार सृजनहार, पालनहार, तारणहार।
जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु।
के बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा,
मृत्यु के बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा।
रोगिन शोकिन एक आधारा,
रोगिन शोकिन एक आधारा।
जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो,
जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और फिर से एक बार आज परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके उन मित्रों का जो आज हमारे इस कार्यक्रम में पहली बार भाग ले रहे हैं। मित्रों, आज मैं आपको बता दूं कि आज हम पुराने नियम से इतिहास की पुस्तकों का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। मित्रों, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब इस अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे और प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके माध्यम से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं, हमें सिखाते और समझाते हैं। आज जब हम इतिहास की पुस्तकों से अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब हम आपके वचन का अध्ययन करें तो निश्चित रूप से आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य कर सके। जब हम उन राजाओं की घटनाओं को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनके जीवनों पर मनन करते हैं, निश्चित रूप से हम सबके जीवन के लिए भी आशीष का कारण ठहरे। इस समय हमारे उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना है जो बीमार हैं, जो दुखी हैं, जो निराश हैं, जो चिंतित हैं, जो किसी न किसी समस्याओं में लेकर के तनाव में हैं, आप उनके साथ हो, उन्हें भी शांति प्रदान करें। इस समय फिर से एक बार हम सबको आपके हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, इतिहास की ये पुस्तकें अनेक परिप्रेक्ष्यों में समरूप हैं। वे राजा शाऊल के युग से सिदकिया के युग तक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दर्शाती हैं। तो क्या इतिहास की ये पुस्तकें राजाओं के इतिहास को दोहरा रही हैं? कदापि नहीं। यूनानी भाषा में अनुवाद करने वालों ने इतिहास की इन पुस्तकों को शीर्षक दिया था, छोड़ा हुआ इतिहास। मित्रों, यह एक अच्छा शीर्षक है, परंतु पर्याप्त नहीं है। इतिहास की इन पुस्तकों में, इतिहास की अन्य पुस्तकों में जो बातें रह गई हैं, मात्र वही नहीं वरन उससे कहीं अधिक है। सच तो यह है कि इतिहास की ये पुस्तकें पुनरावर्तन का नियम या सिंहलोकन का नियम है। परमेश्वर का वचन देने में पवित्र आत्मा की युक्ति यह होती है कि सत्य को वृहत या सविस्तार व्यक्त करे, कि व्यापक क्षेत्र का अवलोकन हो, उसके बाद लौटकर विशेष अंश चुने और उनकी सविस्तार व्याख्या करें। मित्रों, यह ऐसा है जैसे परमेश्वर का आत्मा दूरबीन से संपूर्ण क्षेत्र का अवलोकन करता है और तब हमारे लिए एक विशेष भाग चुनकर उसे दूरबीन के नीचे रखता है कि हम उसकी एक एक बात को देख पाए। मेरे मित्रों, पहला और दूसरा इतिहास में ठीक यही हुआ है। हम पुनरावर्तन के नियम को पहले भी काम में करते हुए देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में दूसरा अध्याय सृजन कार्य के 7 दिनों का पुनरावलोकन करता है और उसमें से एक बात मनुष्य की रचना पर ध्यान केंद्रित करता है। हमारे लिए यह अत्यधिक आवश्यक है क्योंकि हम आदम के वंशज हैं। इसी प्रकार व्यवस्था विवरण, जिसका मूल अर्थ है दूसरी व्यवस्था, वास्तव में व्यवस्था के पुनरावलोकन से कहीं अधिक है। वह वास्तव में जंगलवास के 40 वर्षों के अनुभव के प्रकाश में व्यवस्था का अर्थ निर्धारण है। मेरे मित्रों, इतिहास की इन पुस्तकों में हम देखेंगे कि परमेश्वर पहला और दूसरा शमूएल, पहला और दूसरे राजाओं के वृत्तांत का पुनरावलोकन करता है कि इसके अतिरिक्त जानकारियां उसमें संयोजित करे और जिन्हें वह महत्वपूर्ण समझता है उन घटनाओं पर बल देता है। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ। पहले इतिहास में ध्यान केंद्र दाऊद पर है और दूसरे इतिहास में ध्यान का केंद्र दाऊद की संतान है। राज्य के विभाजन के पश्चात उसकी उत्तरी राज्य को अनदेखा किया गया है। इतिहास की पुस्तकों में दाऊद के पाप का उल्लेख नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे पूर्ण रूप से क्षमा कर दिया था और उसके बारे में फिर चर्चा नहीं की गई। परमेश्वर क्षमा कर देता है तो उसे भूल जाता है। मेरे प्रियो, राजाओं की पुस्तकों में इसराइल का इतिहास सिंहासन के दृष्टिकोण से दिया गया था और इतिहास की पुस्तकों में वेदी के दृष्टिकोण से इसराइल का इतिहास दिया गया है। राजाओं की पुस्तक में राजमहल केंद्र में है, जबकि इतिहास की पुस्तकों में मंदिर केंद्र में है। राजाओं की पुस्तकें हमें इसराइल का राजनीतिक इतिहास सुनाती हैं, जबकि इतिहास की पुस्तकें धार्मिक इतिहास सुनाती हैं। इतिहास की पुस्तकों में राजाओं की पुस्तकों का अर्थ निर्धारण दिया गया है और राजाओं की पुस्तकों में हमने एक प्रश्न सदा ही देखा है, क्या यह इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं है? अतः इतिहास राजाओं की पुस्तक की व्याख्या है। मेरे प्रियो, यह भी है कि राजाओं की पुस्तक में मानवीय दृष्टिकोण का प्रदर्शन है, जबकि इतिहास की पुस्तक में दिव्य दृष्टिकोण का प्रदर्शन है। इज़रा संभवतः इतिहास की पुस्तकों का लेखक है। इस पुस्तक की भाषा और शैली में इज़रा और नहमिया के साथ असाधारण समानताएं हैं। स्पष्ट है कि इतिहास की पुस्तकें बेबीलोन की अर्थात बाबुल की बंधुआई के समय लिखी गई थी। इतिहास की ये दोनों पुस्तकें आरंभ में एक ही थी, वरन इज़रा नहमिया भी इनके साथ एक ही ग्रंथ था। इससे यहूदी परंपरा को समर्थन प्राप्त होता है कि इज़रा ही इनका लेखक है। तो मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 1-9 तक का अध्ययन करेंगे और इसका विषय होगा वंशावली। प्रथम 9 अध्यायों में वंशावलियां दी गई है और अनेक परिप्रेक्ष्यों में परमेश्वर के वचन का यह भाग असाधारण अंशों में से एक है। तो आइए देखते हैं आरंभ कैसे हुआ। पहला इतिहास की पुस्तक 1 अध्याय उसके 1-4 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, आदम, शेत, एनोश, केनान, महलेल, एरेद, हनोक, मतुशेला, लेमेक, नूह, शेम, हाम और एपेत। मित्रों, ये उन मनुष्यों के नाम हैं जिनके बारे में हम उत्पत्ति के पहले 8 अध्यायों में पढ़ चुके हैं। वंशावली को पढ़कर आपको ऐसा प्रतीत होगा कि यहाँ वही नीति अपनाई गई है जो उत्पत्ति की पुस्तक में अपनाई गई थी। पहले परित्यक्त वंशावली दी गई है, इसके बाद वह वंशावली दी गई है जो धर्मशास्त्र में प्रभु यीशु मसीह तक पहुँचती है। ध्यान दीजिए कि पहले एपेत के पुत्रों के नाम हैं, फिर हाम के पुत्र, फिर शेम के पुत्र, परंतु केवल शेम की वंशावली अब्राहम तक चली है। तदुपरांत अब्राहम की संतान के नाम है इश्माएल और उसके पुत्र, फिर कतूरा द्वारा अब्राहम की संतान और उसके बाद इसहाक और इसहाक की वंशावली है। उसमें भी पहले एसाव की वंशावली है, परंतु यीशु की वंशावली याकूब से चलेगी। मेरे मित्रों, अध्याय 2 में याकूब की वंशावली है जो अध्याय 9 तक चल रही है। पद 15 में हम ईशे की संतान को देखते हैं। ईशे का एक पुत्र दाऊद था। अब दाऊद की वंशावली चलेगी क्योंकि प्रभु यीशु दाऊद का पुत्र था। तब हम देखेंगे अध्याय 3 में दाऊद का परिवार है और हम देखेंगे कि कुछ पुत्रों के बारे में हम नहीं जानते थे क्योंकि उनके नाम शमूएल और राजाओं की पुस्तक में नहीं दिए गए थे। अब हम आगे देखेंगे पहला इतिहास की पुस्तक 3 अध्याय और उसके 5 पद में, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यरूशलेम में उसके ये पुत्र उत्पन्न हुए अर्थात शीमा, शोबाब, नातान और सुलेमान। ये चारों अम्मीएल की बेटी बतशू से उत्पन्न हुए। मेरे मित्रों, क्या आपने शीमा और शोबाब का नाम पहले कभी सुना था? हम सुलेमान को तो जानते हैं, परंतु नातान कौन है? यदि आप लूका के सुसमाचार में प्रभु यीशु की वंशावली को देखेंगे तो वह सुलेमान की अपेक्षा नातान से जुड़ी है। यीशु की माता मरियम की वंशावली नातान से है, जबकि यूसुफ की वंशावली सुलेमान से है। मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु को दाऊद के सिंहासन का अधिकार सुलेमान से प्राप्त होता है, जबकि लूका रचित सुसमाचार में हम देखते हैं कि दाऊद के सिंहासन पर उसका अधिकार नातान के लहू से है। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि सुलेमान के वंश में कुन्नयाह था, जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा था, इस पुरुष को निर्वंश लिखो, उसका जीवन काल कुशल से न बीतेगा और न उसके वंश में से कोई भाग्यवान होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान या यहूदियों का प्रभुता करने वाला होगा। मेरे मित्रों, इस पुरुष ने मसीह की वंशावली को तोड़ दिया है। यह एक और प्रमाण है कि यूसुफ यीशु का पिता नहीं था, वह पूर्ण रूपेण कुंवारी का पुत्र था। प्रिय मित्रों, अध्याय 4 में कलूब और शेला से उत्पन्न यहूदा का वंश दिया गया है और शिमोन की वंशावली भी दी गई है, और अध्याय 5 में रूबेन की वंशावली है जो बंधुआई में समाप्त हो जाती है। आइए हम पढ़ेंगे पहले इतिहास की पुस्तक 5 अध्याय उसके 1 और 2 पद। लिखा है, इसराइल का जेठा तो रूबेन था, परंतु उसने जो अपने पिता के बिछौने को अशुद्ध किया, इस कारण जेठे का अधिकार इसराइल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों को दिया गया। वंशावली जेठे के अधिकार के अनुसार नहीं ठहरी, क्योंकि यहूदा अपने भाइयों पर प्रबल हो गया और प्रधान उसके वंश से हुआ, परंतु जेठे का अधिकार यूसुफ का था। मेरे मित्रों, इस पद से हमें विदित होता है कि रूबेन के पहलौठे होने का अधिकार यूसुफ को दिया गया था, यहूदा को नहीं। तथापि यहूदा प्रबल हुआ और यहूदा के गोत्र से शासक उदय हुआ। गाद और मनशे के आधे गोत्र का वृतांत बंधुआई तक ही है, और अंतिम 2 पद इसराइल को बंधुआ बनाए जाने का वर्णन करता है और प्रकट भी करता है। तब हम अध्याय 6 में लेवी महायाजकों का परिवार की वंशावली गेरशोम कहात और मरारी से है। तब हम अध्याय 7 में इसाकर विन्यामिन नप्ताली मनशे एप्रेम और आशेर की वंशावली जो असुरों द्वारा बंदी बनाकर ले जाए गए थे देखते हैं। फिर अध्याय 8 में विन्यामिन की वंशावली विशेष करके शाउल और योनातान से दी गई है। प्रिय मित्रों, अध्याय 1 से 9 में विभिन्न वंशावलियां दी गई हैं। बंधुआई में जाने से पूर्व वंशावलियां मंदिर में देखने के लिए रखी हुई थी। तो आइए अब हम पढ़ेंगे पहले इतिहास की पुस्तक 9 अध्याय उसके 1 पद में, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, इस प्रकार सब इसराइली अपने अपने वंशावली के अनुसार जो इसराइल के राजाओं के वृतांत की पुस्तक में लिखी हैं गिने गए, और यहूदी अपने विश्वासघात के कारण बंधुआई में बाबुल को पहुंचाए गए। मेरे मित्रों, प्रत्येक गोत्र की वंशावली मंदिर में रखी हुई थी। बंधुआई में जाने तक उनका पंजीकरण होता था और बंधुआई से लौटने के पश्चात वंशावलियां सुरक्षित यरूशलेम लाई गई थी। जब लौटने वाले यहूदियों ने मंदिर का पुनः निर्माण किया, तब वंशावलियां वहां थी। प्रभु यीशु के जन्म के समय वंशावलियां सुरक्षित थी, और आप निश्चय जानिए कि यीशु के बहरियों ने मंदिर जाकर यीशु की वंशावली का अवलोकन किया होगा। जैसा हम कह चुके हैं कि मत्ती यूसुफ की वंशावली द्वारा यीशु को दाऊद के सिंहासन का वैधानिक अधिकारी बनाता है, और लुका मरियम की वंशावली से यीशु को दाऊद के सिंहासन का खून का अधिकारी बताता है। जहां तक हम जानते हैं, यीशु की वंशावली पर कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई, क्योंकि वह सही थी और सबके सामने थी। जब रोमी तीतुस ने सन 70 में मंदिर को ध्वस्त किया, तब स्पष्ट है कि सब वंशावलियां नष्ट हो गई थी। परंतु ध्यान देने योग्य और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां इतिहास की पुस्तकों में वंशावलियां बंधुआई तक दी गई हैं। उसके बाद जब यहूदी फिर स्वदेश लौटे, तो यीशु के आगमन तक की वंशावलियां सुरक्षित की गई थी। यीशु के बाद लेखा विलोप हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यह बताने की इच्छा रखता था कि यीशु पूर्ण रूप से मनुष्य था। परमेश्वर हमें यह दर्शाना चाहता है कि प्रभु यीशु आदम की वंशावली से था और वह अंतिम आदम था, तीसरा आदम नहीं होगा। यीशु इस पृथ्वी पर अंतिम परिवार का मूल पिता है। प्रियो, मानव जाति के 2 ही परिवार हैं, आदम का परिवार और परमेश्वर का परिवार। आदम का परिवार भटका हुआ परिवार है और हमारा जन्म उसमें हुआ है। हम जन्मजात पापी हैं, परमेश्वर से अलग हैं और हम में परमेश्वर के लिए क्षमता नहीं है। आज संसार में यह अलगाव स्पष्ट दिखाई देता है। संपूर्ण मानव परिवार आदम का परिवार है और आदम में सब मरे हुए हैं। यह आदम में हमारा अस्तित्व अंधकारपूर्ण है, परंतु हमें अंतिम आदम मसीह में आशा है। वह एक दूसरे परिवार का मूल पिता है, परमेश्वर का परिवार। वह दूसरा मनुष्य कहलाता है, क्योंकि परमेश्वर इस परिवार में अनेक मनुष्यों को लाएगा और शामिल करेगा। मेरे मित्रों, यही वंशावली उस मनुष्य तक पहुंचती है जो आत्मा से जन्मा है। यदि आप आज कह सकते हैं, मैंने मसीह के पास आकर उसमें विश्वास किया है, वह मेरा उद्धार करता है और परमेश्वर के आत्मा ने उसे मेरे लिए वास्तविक बना दिया है, तब आप अंतिम आदम के परिवार के सदस्य हैं। इस परिवार में जीवन है। प्रभु यीशु ने कहा था कि वह जीवन लाया है, और सच तो यह है कि उसने कहा था, जीवन मैं हूं। उसने यह भी कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 10 पद में, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। जी हां, वह जीवन को मात्र अस्तित्व से अधिक बनाता है, नशे और शराब की रोमांचक यात्रा से कहीं अधिक। उसके साथ यात्रा करने पर स्वर्ग की यात्रा हो जाती है। उसकी अपनी उपस्थिति में वह आपको चलाता है। मेरे मित्रों, शेष अध्याय 9 लेवी के गोत्र पर बल देता है, तो हम पढ़ेंगे पहले इतिहास की पुस्तक 9 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, जो लोग अपने अपने निज भूमि अर्थात अपने नगरों में रहते थे, वह इसराइली, याजक, लेवीय और नतीन थे। मेरे प्रियो, इसका अर्थ यह हुआ कि सबसे पहले इसराइली लेवी गोत्र के थे, पहले याजक जो परमेश्वर की सेवा करते थे, तदोपरांत लेवी। लेवी का संपूर्ण गोत्र याजक नहीं था। हारून का परिवार याजकीय सेवा करता था और अन्य लेवी एक प्रकार से मंदिर के भंडारी थे। मेरे प्रियो, तब नतोपाइयों का उल्लेख आता है। वे सेवक थे और संभवतः दास थे। क्या इसराइल में दास थे? मेरे विचार में अवश्य थे, परंतु इसराइली अपने भाइयों में से दास नहीं रखते थे। गिबोनी उनके दास ही तो थे। वे मंदिर में साफ सफाई का या बर्तनों को चमकाने का काम करते थे। मैं इस अध्याय में एक अति रोचक पद आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। कृपया आप निकालें पहले इतिहास की पुस्तक 9 अध्याय उसका 33 पद। पहले इतिहास की पुस्तक 9 अध्याय उसका 33 पद लिखा है, और ये गवाये थे जो लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य थे और कोठरियों में रहते और काम से छूटे थे, क्योंकि वे रात दिन अपने काम में लगे रहते थे। मेरे प्रियो, वहां गाना बजाना भी बहुत होता था। संगीत निर्देशक भी लेवी ही होते थे। यदि मैं इसराइली होता तो निश्चय ही जान जाता कि मैं लेवी वंश का नहीं हूं, क्योंकि मैं गा नहीं सकता। मेरे प्रियो, इसराइल में संगीत उच्च स्तर पर विकसित था। आपको स्मरण होगा कि दाऊद संगीत में बहुत रुचि रखता था, और सच तो यह है कि उसे इसराइल का मधुर संगीतकार कहा गया है। अधिकांश भजन उसी ने रचे हैं। मित्रों, अध्याय के अंत में शाऊल की वंशावली दी गई है, जो शाऊल और उसके पुत्र योनातान से चल रही है। अध्याय 9 के साथ ही इतिहास में व्यक्त वंशावलियों के उल्लेख का अंत होता है। प्रियो, यह धर्मशास्त्र की सबसे लंबी वंशावली है। संसार के साहित्य या इतिहास में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। वंशावली का आरंभ आदम से होता है और प्रभु यीशु में आकर अंत होता है, पहले आदम से अंतिम आदम तक। प्रियो, यह सबसे लंबी वंशावली है। इससे प्रकट होता है कि हम सब एक ही परिवार में हैं। आज तो कोई भी अपनी वंशावली को आदम से जोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वंशावलियां सन 70 में नष्ट हो गई थी, जब रोमी तीतुस ने मंदिर को ध्वंस किया था। परंतु हम आदम तक का एक सामान्य मार्ग खोज सकते हैं। कुछ मनुष्य एपेत के वंशज हैं, तो कुछ हाम के वंशज हैं और कुछ शेम के वंशज हैं, परंतु सबका मूल पिता आदम है। मेरे मित्रों, इतिहास की पुस्तक में वंशावली में बड़ी चूक पर ध्यान देना रोचक वरन महत्वपूर्ण है। उदाहरण के रूप में देखेंगे, कैन और उसके परिवार का कहीं भी उल्लेख नहीं है। क्या आदम का पुत्र कैन नहीं था? जी हाँ था, परंतु उसका नाम यहाँ नहीं है क्योंकि उसका वंश समाप्त हो गया था। वह जल प्रलय के समय में नष्ट हो गया था, जैसे उत्पत्ति 7 में इसका वर्णन किया गया है। मेरे विचार में सब वंशावलियों में कहीं न कहीं चूक की गई है, उत्पत्ति में भी। इससे मानव उत्पत्ति के समय पर प्रकाश गिरता है, मनुष्य कितना पुराना है। मेरा अपना विचार है कि मनुष्य 6000 वर्षों से अधिक पूर्व का है, और मेरे विचार में मनुष्य बहुत लंबे समय से इस पृथ्वी पर है। जो भी हो, परमेश्वर ने आदम को मानव रूप में सृजा था, बंदर नहीं। मित्रों, विकासवाद के सिद्धांत पर एक व्यंग चित्र कभी प्रकाशित हुआ था, उसमें दिखाया गया है कि एटम बम आदि के फटने से संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो गई, केवल 2 बंदर बचे जो एक सूखे पेड़ पर बैठे हैं। उस व्यंग चित्र का शीर्षक था, बंदर कह रहे हैं, हमें नए सिरे से सब कुछ करना होगा। धर्मशास्त्र निस्संदेह हमें आश्वासन दिलाता है कि मानव जाति आत्महत्या नहीं करेगी। तो मनुष्य की उन्नति के विषय में क्या कहें, वह इस पृथ्वी पर लंबे समय से है, आदम के समय से। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है जानवर के रूप में नहीं, परंतु मनुष्य के रूप में, और उसने हमें समझ दी है ताकि हम उसके निकटता में बने रहें और उसकी स्तुति और आराधना करते रहें। मेरे मित्रों, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है, और मुझे विश्वास है कि इस इतिहास की पुस्तक से आपने बहुत सारी नई बातों को सीखा है। आने वाले समय में जब हम आगे बढ़ेंगे तो और भी बहुत से महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे। कृपया आप इसके बारे में अवश्य अपने मित्रों को बताएं और इस कार्यक्रम को सुने ताकि आप आशीषों को प्राप्त कर सकें। इस समय हम आपसे विदा चाहते हैं, तब तक प्रभु की निकटता में बने रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, तेरा हो अभिषेक। अमन के राजकुमार, आज हमारे